आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इटली के शहर अपूलिया में G7 की आउटरीच सरबराह मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म कई आलमी रहनुमाओं के साथ दोतरफा बातचीत भी करेंगे। अजीत डोभाल को फिर से कौमी सलामती का मुशीर और डॉ पीके मिश्रा को वज़ीर-ए-आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। लोकसभा स्पीकर का इंतखाब इस महीने की 26 तारीख को किया जाएगा। कुवैत में आग लगने के वाकये में मारे गए 45 भारतीय शहरियों के जसद खाकी आज सुबह खसूसी परवास के जरिए वतन वापस लाए जा रहे हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 3-4 दिन के दौरान शिमाल मगरबी, शिमाली और मशरकी भारत में शदीद गर्मी के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और खेलों में भारत की दिव्या देशमुख ने गुजरात के गांधीनगर में लड़कियों की आलमी जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इटली के शहर अपूलिया में G7 की आउटरीच सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मिलूनी की दावत पर दो दिन के दौरे पर कल रात इटली पहुंचे हैं। भारत को मेहमान मुल्क के तौर पर मधु किया गया है। G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमरीका पर मुश्तमिल है। इससे कबल रवाना होने से पहले अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार भारत इटली क्लीदी साझेदारी को मुस्तहकम बनाने, भारत बहरुल काहिल खत्ते और बहरे रोम के खत्ते में इश्तराक को फरोग देने की पाबंद है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात पर खुशी है कि अपने ओहदे की लगातार तीसरी मुद्दत में उनका पहला दौरा G7 सरबराह मीटिंग के लिए इटली का हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि गुज़श्ता साल इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मिलोनी दो बार भारत के दौरे पर आई थीं और बाहमी एजेंडे को ज्यादा मुतहर्रिक बनाने में इसका अहम रोल रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि आउटरीच इजलास में तबादले ख्याल के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तवानाई, अफ्रीका और बहरे रोम के खत्ते पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि इससे भारत की सदारत में मुनक़िदा G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस और G7 सरबराह मीटिंग के नतीजों के दरमियान और ज्यादा तालमेल पैदा करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा उन मामलात पर तबादले ख्याल भी हो सकेगा जो दुनिया के तरक्की पजीर और कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के लिए अहमियत के हामिल हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वह सरबराह मीटिंग में शिरकत करने वाले दीगर रहनुमाओं के साथ मुलाकात के मुंतजिर हैं। मजीद तफसील हमारी नामा निगार से।
G7 सरबराह इजलास में भारत की शिरकत 11वीं मरतबा है, जबकि G7 में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की लगातार 5वीं बार शिरकत है। भारत की G7 सरबराह इजलास में लगातार शमूलियत पहचान और उन कोशिशों में इजाफे को वाज़ेह तौर पर जाहिर करती है कि भारत अमन, सिक्योरिटी, तरक्की और माहौलियात के तहफ्फुज़ समेत ग्लोबल चैलेंजों को हल करने की मुसलसल कोशिशें करता रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के G7 सरबराह इजलास में शामिल होने से गुज़श्ता साल मुनक़िद किए गए G20 सरबराह इजलास के नतायज पर अमल करने का बरवक्त मौका भी फराहम होगा। इसके अलावा भारत के साथ साथ इटली ने G7 सदारती रुकन के तौर पर अक़वामे मुत्तहिदा समेत अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, केन्या, मॉरिटानिया, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, ट्यूनीशिया, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुछ बैनुल अक़वामी तंजीमों को भी मधु किया है। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज G7 सरबराह मीटिंग के मौके पर कई आलमी रहनुमाओं के साथ दोतरफा बातचीत भी करेंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आलमी रहनुमाओं के साथ जनाब मोदी की मुलाकात के बारे में तफसीली जानकारी दी।
The Prime Minister of India has arrived at Brindisi Airport in Italy to participate in G7 summit. We have several bilateral meetings with world leaders lined up. He'll also be addressing the outreach session of the G7 summit.
जनाब मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स, इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मिलोनी, जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिडा और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बाहमी मुलाकात करेंगे। लगातार तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने के बाद जनाब मोदी का यह पहला गैर मुल्की दौरा है। जनाब अजीत डोभाल को एक मरतबा फिर कौमी सलामती का मुशीर और डॉ पीके मिश्रा को वज़ीर-ए-आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। کابینہ کی تقرری سے متعلق کمیٹی نے کل ان تقرریوں کو منظوری دی. عملے، عوامی شکایات اور پینشن سے متعلق وزارت نے کہا ہے کہ سابق آئی پی ایس جناب ڈھوبال اور سابق آئی اے ایس جناب مشرا کی تقرریاں وزیراعظم کی مدت کار یا مزید احکامات تک جو بھی پہلے ہو اس تک رہیں گی. کمیٹی نے ریٹائرڈ آئی اے ایس افسروں امت کھرے اور ترون کپور کی وزیراعظم کے مشیروں کی حیثیت سے تقرری کو بھی منظوری دے دی ہے. لوک سبھا اسپیکر کا انتخاب جون کی 26 تاریخ کو ہوگا. 18ویں لوک سبھا کا پہلا اجلاس اس ماہ کی 24 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے. اس اجلاس کے دوران 9 منتخبہ ارکان کو حلف دلایا جائے گا. اس اجلاس میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے مشترکہ خطاب ہوگا اور ان کے خطاب پر بحث بھی ہوگی. راجیہ سبھا کے اجلاس کا آغاز اس ماہ کی 27 تاریخ سے ہوگا. پارلیمنٹ کا اجلاس آئندہ ماہ کی 3 تاریخ کو اختتام پذیر ہو جائے گا. نیٹ یو جی امتحان دینے والے ان 1563 طلباء کا دوبارہ امتحان اس مہینے کی 23 تاریخ کو ہوگا جنہیں امتحان میں گریس مارکس یا تلافی کے طور پر نمبر دیے گئے تھے. کل جاری کیے گئے ایک نوٹیفیکیشن میں امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی ایک پبلک نوٹس جاری کرے گی اور ای میل کے ذریعے متعلقہ طلبہ سے رابطہ قائم کرے گی تاکہ انہیں اس سلسلے میں باضابطہ جانکاری مل سکے. امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ ایجنسی کی اعلی اختیاراتی کمیٹی کی رپورٹ پر سپریم کورٹ کے مشاہدے کے تناظر میں دوبارہ امتحان کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ادھر تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے نیٹ امتحان میں ہیرا پھیری، سوال نامے کے افشا ہونے اور بدعنوانی کے الزامات کو غلط بتایا ہے. کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے اس طرح کے الزام لگائے تھے. جناب پردھان نے کہا کہ نیٹ امتحان میں کسی طرح کی ہیرا پھیری یا سوال نامہ افشا ہونے کا اب تک کوئی پختہ ثبوت نہیں ملا ہے.
سپریم کورٹ کے ایک بہت سپشٹتا کے ساتھ آرڈر آئی ہے، اس کو میں سواگت کرتا ہوں. نیٹ کو لے کے جو ایک سنشے اور جو شنکا سامنے آئی تھی وہ آج سماپت ہو رہی ہے. آنے والے دنوں میں سارے پرکار کی شنکا کو دور کرنے کے لیے اور پاردرشتا لیا جائے گا.
جناب پردھان نے کہا کہ مرکزی سرکار نے اس سال امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ایکٹ منظور کیا ہے جس میں سوال نامہ افشا ہونے کی روک تھام اور دھوکہ دہی کے بغیر امتحان کرانے کی کئی سخت دفعات موجود ہیں. وزیر موصوف نے یہ کہتے ہوئے کانگریس کی نکتہ چینی کی کہ وہ اپنی پرانی روش پر چلتے ہوئے طلبہ کے مستقبل پر سیاست کر رہی ہے. جناب پردھان نے کہا کہ اپوزیشن کے پاس کوئی معاملہ نہیں ہے اور اس طرح کے حساس معاملے پر اپوزیشن حقائق کے بارے میں واقفیت حاصل کیے بغیر صرف جھوٹ پھیلانے میں لگی ہوئی ہے. اس سے پہلے کانگریس پارٹی نے نیٹ امتحان معاملے پر سپریم کورٹ کی نگرانی میں منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت آج ایک خصوصی پرواز کے ذریعے کویت کی ایک عمارت میں آگ لگنے کے المناک واقعے میں ہلاک ہونے والے اپنے 45 شہریوں کے جسد خاکی وطن واپس لا رہا ہے. ایک بیان میں کویت میں بھارتی سفارتخانے نے کہا ہے کہ یہ خصوصی پرواز دلی کے لیے روانہ ہونے سے پہلے کوچی اترے گی. ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر بھارتی شہری کیرلا سے ہیں جن کی تعداد 23 ہے. خارجی امور کے وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ بھارتی شہریوں کے جسد خاکی کو جلد سے جلد وطن واپس لانے اور حادثے میں زخمی ہوئے افراد کی خیر و عافیت کو یقینی بنانے کے لیے کویتی حکومت کے ساتھ تال میل کی خاطر کل وہاں پہنچے تھے. جناب کیرتی وردھن سنگھ نے کل کویت کے نائب وزیر اعظم شیخ فہد یوسف سعود السبھا سے ملاقات کی تھی. کویت کے نائب وزیر اعظم نے امیر کویت کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا اور ہر ممکن مدد کی ان کی ہدایات کے بارے میں مطلع کیا. کویت میں بھارتی سفارتخانے نے کہا ہے کہ جناب کیرتی وردھن سنگھ نے امیر کویت کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی نیک خواہشات پیش کی اور فوری طور پر مدد فراہم کرنے کے لیے کویتی حکام کا شکریہ ادا کیا. ادھر کیرلا میں ریاستی وزیر صحت وینا جارج نے کہا ہے کہ کیرلا کے سبھی باشندوں کے جسد خاکی واپس لانے کے لیے سبھی انتظامات کر لیے گئے ہیں. اس دوران مرکزی حکومت نے کویت میں ہلاک ہوئے بھارتی شہریوں کے کنبوں کو 2 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا ہے. وہیں منقف میں رہائشی عمارت کی کمپنی این بی ٹی سی نے ہر کنبے کو 8 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے. معروف غیر ملکی تاجر और यूएई के लुलू ग्रुप के चेयरमैन एम ए यूसुफ अली ने भी मुतासरीन के कुनबों को 5 लाख रूपये देने का ऐलान किया है। केरला हुकूमत ने भी महलुकीन के कुनबों को 5 लाख रूपये और जख्मियों को 1 लाख रूपये देने का ऐलान किया है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने मुल्क के शुमाल मगरबी, शुमाली और मशरकी हिस्सों में तेज गर्मी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आइंदा 3 से 4 दिनों तक शदीद से बहुत शदीद गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए आईएमडी के सीनियर साइंसदान आर के जीनमनी ने कहा कि आइंदा दिनों में इन खित्तों में औसत दर्ज हरारत में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस इजाफा होने का इम्कान है।
सीवियर हीट वेव कंटिन्यू टू प्रिवेल हो रहा है। अभी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हमारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फर्दर पूर्व भारत जैसे उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, झारखंड और उड़ीसा तक फैला हुआ है। उष्ण लहर, अति उष्ण लहर जो चल रहा है ये अभी 3 से 4 दिन तक रहेगा। इसको देखते हुए सभी को बार बार वार्निंग दिया जाता है कि तापमान को देखते हुए अपना अपना सेफ्टी एक्शन ले।
मौसमियात के महकमे ने आइंदा 3 से 4 दिनों में जेली, हिमालयाई, मगरबी बंगाल, सिक्किम और मुल्क के शिमाल मशरक़ हिस्से में कहीं कहीं शदीद से बहुत शदीद बारिश की भी पेशगोई की है। जनूब मगरबी मानसून पर आईएमडी ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिन में इसके महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, साहिली आंध्र प्रदेश और शिमाल मगरबी खलीज बंगाल के कुछ और हिस्सों की जानिब बढ़ने के लिए मौसम साजगार है। इस दौरान दिल्ली में आईएमडी ने पेशगोई की है कि यहां जुज़वी तौर पर मतला अबरालूद रहने के साथ साथ गरज चमक के साथ हल्की बारिश और 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गर्मी रहेगी। कौमी राजधानी में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत के 44 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। शतरंज में गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी क्लब में भारत की दिव्या देशमुख ने बल्गारिया की बेलुस्लावा क्रास्तीवा को आखिरी दौर में हराकर लड़कियों की आलमी जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। आला दर्जे की खिलाड़ी दिव्या ने महज 26 चालें चलकर 10वें राउंड में क्रिस्टीवा को हराकर 20 साल से कम उम्र का अपना पहला खिताब जीता। दिव्या को इस चैंपियनशिप में एक भी मुकाबले में शिकस्त से दोचार नहीं होना पड़ा और उन्होंने अपने 9 मुकाबले जीते जबकि 2 मुकाबले बराबरी पर खत्म हुए। आईसीसी के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने ओमान को 8 विकेट से हरा दिया। इस तरह इंग्लैंड ने सुपर 8 मरहले में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। पेश है एक रिपोर्ट।
कल रात नॉर्थ साउंड एंटीगा में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर ओमान से बल्लेबाजी करने को कहा और उसकी पूरी टीम महज 47 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड ने सिर्फ 19 गेंदों में 2 विकेट खोकर निशाना हासिल कर लिया। एक दूसरे मैच में किंग्सटाउन में बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 25 रन से हरा दिया। आज फ्लोरिडा में अमरीका का मुकाबला आयरलैंड से होगा। ऐश्वर्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान।
शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा हिन्दुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के G7 आउटरीच सरबराह इजलास में शिरकत करने के लिए इटली रवाना होने से पहले दिए गए इस बयान को अहमियत दी है कि उन्हें इस कॉन्फ्रेंस में उन उमूर पर बातचीत करने का मौका मिलेगा जो ग्लोबल साउथ के लिए अहम हैं। रोजनामा मिलाप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने मरकजी वजीर राजनाथ सिंह के वजीर दिफा का ओहदा फिर से संभालने की खबर को पेश करते हुए उनके इस बयान को नुमाया किया है कि मुल्क को ज्यादा महफूज, खुद ही निसार और खुशहाल बनाने पर जोर दिया जाएगा। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के तकरीबन सभी अखबारों ने हज से मुतालिक खबरों को अवलियत दी है।
और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इटली के शहर पूलिया में G7 की आउटरीच सरबराह मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म कई आलमी रहनुमाओं के साथ दोतरफा बातचीत भी करेंगे। अजीत डोभाल को फिर से कौमी सलामती का मुशीर और डॉ पीके मिश्रा को वज़ीर-ए-आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। लोकसभा स्पीकर का इंतखाब इस महीने की 26 तारीख को किया जाएगा। कुवैत में आग लगने के वाकये में मारे गए 45 भारतीय शहरों के जज्द खाकी आज खसूसी परवास के जरिए वतन वापस लाए जा रहे हैं। और खेलों में भारत की दिव्या देशमुख ने गुजरात के गांधीनगर में लड़कियों की आलमी जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।